सुखय हाँ, लेक्चर नंबर 7। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहु। अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सहजानंद जी रचित यह सुख यहाँ नामक ग्रंथ है, उसके प्रथम भाग के पृष्ठ संख्या 22 पर हम आ गए हैं, 22। यहाँ वस्तु की स्वतंत्रता बताते हुए ये 7 नंबर का अपना श्लोक चल रहा है कि वस्तु की ये पेज नंबर 20 पर लिखा, देखो 1-7 जो लिखा ना श्लोक, ये सारे इसको सहजानंद गीता कहा है और इन्होंने सहजानंद जी ने स्वयं इसकी रचना की है। तो वहाँ लिखा था अर्थ में, देखो वस्तु की स्वतंत्रता वस्तु का स्वरूप है, उस स्वरूप में कौन क्या करेगा, यानी स्वतंत्रता या वस्तु का स्वभाव ही है, स्वरूप ही है, तो स्वभाव में स्वरूप में अन्य के किसी का कुछ नहीं चलता है। निश्चय से यानी खरेखर विकल्पों के कारण ही मेरी हानि है, इस दूसरे में कुछ चलता तो नहीं परंतु ये विकल्प करता रहता है और विकल्प से अपनी हानि होती है, क्योंकि हम अपने स्वरूप के बारे में सोचने के बदले पर पदार्थों में कुछ ना कुछ करने धरने की विकल्प करते रहते हैं, तो यही हानि है अपने लिए। अज्ञानी तो करता बुद्धि से करता रहता है, ऐसे तो होते हैं क्योंकि ज्ञानी उसका परज्ञेय तरीके से जान रहा है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। अटका नहीं सकता, नहीं वो तो अपने से भिन्न ही, पहले उसकी भिन्नता नक्की करनी है, वो करने धरने की या उसको कर्म करने की चिंता नहीं करना, ये तो अपना स्वरूप उसी समय पड़ा है कि नहीं पूरा का पूरा, उसको नहीं देखते और कहाँ देखते हैं विकल्प को, फिर वो कैसे कम करे, ये कम होगी कि नहीं होगी उसकी चिंता ही नहीं करनी, अपने से जुदा है तो कम हो या ज़्यादा हो उसमें से यदि भिन्नता जान ली तो कोई चिंता नहीं हो। हाँ जानता है नहीं, वो तो पहले विकल्पों में, वो भी विकल्पात्मक जान रहा है, विकल्प से जुदा हूँ ये भी विकल्प में, हाँ वो विकल्प है। मानना कहाँ हुआ, वो मानना उसका मानना नहीं हुआ, अनुभव पूर्वक मानना नहीं हुआ, भेद उसने जाना नहीं है, भेद संबंधी जानकारी ली है, हाँ ये सच है, ये इतना उसका अंदर से थोड़ा इसको हकार आया है, परंतु अभी अनुभव पूर्वक निश्चित नहीं किया, तब तो उसका भेद ज्ञान नहीं कहलाएगा। हाँ उसके भेद ज्ञान की अभी वो तो कोशिश कर रहा है।
देखो मूल में ऐसी बात है, अज्ञानी हो या ज्ञानी हो दोनों को विकल्प होते हैं,
बिल्कुल,
लेकिन अज्ञानी विकल्पों का कर्ता मानता है कि मैं ऐसा करूं तो ये ठीक होगा, ये जो भी है, लेकिन उसके भी जो विकल्प होने वाले वही होंगे, और ज्ञानी के भी विकल्प होंगे लेकिन वो उनका ज्ञाता है, वो उसका कर्ता नहीं, इतना डिफरेंस है।
और अज्ञानी ये भी मानता है कि देखो मैंने ये ऐसा सोचा, मैंने ऐसा ये इसलिए ऐसा हुआ, यानी वो परवस्तु का भी कर्ता मान रहा है अपने, खाली विकल्प का कर्ता नहीं
वो तो,
यानी वो तो शास्त्र भी सुनोगे तो दीपन में विकल्प तो किए ना, मैंने शुभ भाव तो किए ना, मैंने मंदिर बनाने के सोचे तो सही ना, वो मंदिर अपने कारण हुआ पर मैंने सोचा तो सही ना, यानी कहीं ना कहीं हाँ उसमें अटका है वो, ये तो फिर इधर जाओ कि उधर जाओ, ये ऐसे तो उलझन तो सबके मन में, देखो ऐसे विकल्प आना अलग बात है, और हमने ऐसा सोचा इसलिए ऐसा हुआ, ये जो मान्यता हुआ और गड़बड़ कर दिया।
नहीं, हम भी ऐसा बहुत, मैंने तो इतना ख्याल किया था, इतनी उसकी मतलब खातरी, जिसको हम कहते बहुत काळजी ली थी, फिर भी वो मर गया, तेरे करने से थोड़ी कुछ हो रहा है।
अरे ऐसा भी कहते ना, हमने आपको बताया था आपने नहीं सुना। अरे नहीं सुना नहीं, वो तो आप सुनते भी तो भी जो होने वाला वही होता। फिर ये भी हमने भी आपको बताया था करके, उसके आप अपने कर्ता बुद्धि लेता है कि मैंने तो आपको आगाही कर दी थी, आपने नहीं सुना, इसलिए ऐसा हुआ। ये सारे इफ एंड नॉट ऐसे चलता रहता है। देखो अभी हम आगे पढ़ते हैं, हमने तो 22 पेज पर आए थे। देखो नया पैराग्राफ, प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है। तो वह भी इसको क्या कहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को मिलकर एक नाम है। यह क्या लिखा, प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य में रहता है, अपने क्षेत्र में, अपने काल में, अपने भाव में, इसको एक नाम है। आप बताएंगे, स्वचतुष्टय, ये चार बातें है ना, उसको चतुष्टय कहते हैं। हर बार इतने खोल कर नहीं कहेंगे, ये अपने स्वचतुष्टय में रहता है इतना कह देंगे। तब अन्य में कोई क्या कर देगा, कुछ भी तो नहीं, यानी वो अपना द्रव्य छोड़कर, अपना क्षेत्र छोड़कर, पर पदार्थ में उसकी एंट्री ही नहीं है, तो वहाँ उसको कुछ उसके परिणमन करे या उसमें कुछ हेरा फेरी करे, ये बात कैसे हो सकती है।
यहाँ पर बता रहे हैं कुछ भी तो नहीं किंतु विकल्पों में हानि होती है, यानी विकल्प जब कर रहा है जीव, तब वो अपने स्वभाव से, स्वरूप से लंबा गया,
चित हो गया।
इसलिए कहते वो हानि है।
यही विचार त्यागियों को भी करना चाहिए कि हे आत्मन, जिसका त्याग कर दिया है उसके विपरीत तो होगा नहीं, अतः वह शक्ति मुझे दो जिससे मैं अपनी ओर झुका रह सकूं, अन्यथा मन कमजोर होने से मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, फिर उठने का कोई अवसर नहीं रहेगा, अतः इन थोथी कल्पनाओं का त्याग कर दूं। यानी थोथी कल्पना नहीं, विकल्प, जो खोटे भ्रम जो है, भ्रम का त्याग करना चाहिए। ये उन त्यागियों की बात है जो बिना सम्य दर्शन के, जिन्होंने त्याग अंगीकार किया है, उनके लिए कहते वो भी ऐसा विचार करे। त्यागी हो या व्रति हो या नहीं हो, सम्य दर्शन तो होगा तो तत्व विचार से ही होगा, बिना तत्व विचार के किसी को नहीं होगा। मैं अन्य पदार्थ में कुछ नहीं करता, थोथिये ने बेकार की, आप क्या कहते हैं, नकामी।
धोती है नहीं, इसको हम कहते खोटी कल्पना,
बेकार की, खोटी। हाँ,
गुजराती शब्द है,
चौथी गुजराती लग रहा है ना।
हाँ, नहीं, स्वामी जी वापरते थे
चौथा, चौथा जैसा थोथा कहते थे, यानी जो
गन्ने का,
गन्ने का जो है
निकाल लिया
उसमें वो थोथा आता है ना,
चौथा।
अब मराठी में चौथा कहते हैं उसको। मैं अन्य पदार्थ में कुछ नहीं करता, मात्र विकल्प ही है, सो उन विकल्पों में अपनी ही हानि है, लाभ कुछ नहीं है। जो विकल्प करने वाला है उसे कर्ता कहा गया है। वैसे तो मिथ्या दृष्टि भी कर्ता नहीं है, कोई वस्तु पर पदार्थ का कर्ता नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, जो विकल्प करने वाला है उसको पर पदार्थ का भी करने वाला है, यानी वो विकल्प का भी करता है और पर पदार्थ का भी, वो अज्ञानी मान रहे अपने को करता। हाँ, वैसे तो मिथ्या दृष्टि भी करता नहीं है, क्योंकि पर पदार्थ का कोई कर ही नहीं सकता, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। कोई वस्तु पर पदार्थ का करता नहीं है, प्रत्येक वस्तु अपने परिणमन का ही करता है। सो यह विकल्प करने वाला ही करता है, तथा जो विकल्प है वह कर्म है। ये भी अपेक्षा समयसार में भी ली है। अभी हमने जो पढ़ा था ना उसमें आत्मभावना में, उसमें भी बात बताई थी। हाँ, यह परिणमति सगरता, यह तो विभाव रूप परिणमन कर रहा है, तो परिणमन की अपेक्षा उसका वो करता है। हाँ, और विकल्प उसका कर्म है, कर्म यानी कार्य है। अतः विकल्प वाले के कर्ता कर्मपना कभी नष्ट नहीं होता। वस्तु का स्वरूप स्वतंत्रता है, तब अन्य पदार्थ अन्य में क्या कर देगा, अतः विकल्प करना व्यर्थ है। अभी अभी यही बातें सब आत्मभावना में भी आ चुकी थी कि विकल्प कितना व्यर्थ है। ज्ञान ही निज स्वरूप में ले जाने वाला है, यानी हम ऐसा सोचते कि विकल्प के कारण हम स्वरूप का अनुभव करेंगे, क्योंकि ध्यान के नाम पर विकल्प करना चाहता है, परंतु ज्ञान ही उसको स्वरूप तक ले जाएगा, विकल्प नहीं। पहले अभिप्राय में ही नक्की करना है, विकल्प आते हैं उसकी चर्चा, उसकी चिंता नहीं करनी है, नहीं परंतु हमने क्या मान के रखा है उसकी बात है। विकल्प के कारण हमको अनुभव होगा ये माना है कि ज्ञान के कारण होगा ये माना है, ये नक्की करना है। हाँ, विकल्प करते करते नहीं होगा।
अभी आपने बताया ना विकल्पों को रोकने का रास्ता क्या है, यही है ज्ञान ही।
तो ज्ञान
इसका ज्ञान के जो ज्ञान ही निज स्वरूप में ले जाने वाला है,
अपने स्वरूप तक पहुंचने में।
हेलो,
ये व्यवहार से उपाय बताया है कि ये जो ध्यान के प्रकार बताते ना, अग्नि, जल, तत्व, रूपवती आदि धारणाएं हैं, यानी अग्नि धारणा, जल धारणा, तत्व धारणा वगैरह वगैरह। सर्वप्रथम उपाय और है, ये धारणा है। आपने ये तो ध्यान के प्रकार आपने सुने होंगे, रूपवती ध्यान, तत्व, हाँ हाँ, रूपस्थ पदस्थ वगैरह, हाँ हाँ। ये धारणा और ध्यान उसमें वो उस पुस्तक में आता है ना, कौन सा ज्ञान, ज्ञानारणों में आते हैं सर। तो यहाँ कहते हैं व्यवहार से उपाय बताए हैं, तो सर्वप्रथम उपाय और है, वह यह कि शरीर को स्थिर आसन से बिठाना सबसे पहले आवश्यक है। अरे, मेरुदंड की कमर के बीच की सीधी हड्डी को साध कर बैठने से मन एकाग्र होता है, पद्मासन में बैठने से स्थिरता आती है, फिर श्वास देखता हुआ लेवे, देखता हुआ छोड़े। हमने कब श्वास छोड़ी और कब ली यह दिखता तो नहीं, किंतु पता तो लग ही जाता है। अब हमने श्वास ली और अब छोड़ी, पहले अपने मन को एकाग्र रखने के लिए यह करना, फिर इसके पश्चात भीतर को श्वास लेते समय अंतरंग में सोचे और श्वास छोड़ते समय अंतरंग में ही अहम की कल्पना करे। प्रकृति से श्वास छोड़ते व लेते समय भी तो ऐसा, यानी सोहम सोहम शब्द होता है और वैसा ही शब्दों का जुटाव फिट बैठता है। सो का तात्पर्य भगवान और अहम का तात्पर्य है वह मैं हूँ। जो भगवान है वह मैं हूँ, यानी वो विकल्प की बात चल रही है और कुछ वहाँ जो बातें बताई उस तरह से। वैसे कोई आसन का ऐसा नियम नहीं है कि ऐसा ही बैठना चाहिए, ऐसा ही सोचना चाहिए, कहीं पर भी ऐसा नियम नहीं है। यह श्वास के आश्रय से ही प्रतिध्वनित होता है, करने से स्वयं पता लग जाएगा, फिर सो को लुप्त कर देवे, केवल अहम रह जावे। ऐसा करने से श्वास की वह कल्पना छूट जाएगी। श्वास का आश्रय छोड़ अपने को देखा तो अहम की बात आई, अहम का बहुत होते समय भी अहम की कल्पना मिटकर आनंद की अनुभूति होती है। उसके लिए परंतु ये तत्व विचार मुख्य है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध जो कुछ है, यानी निमित्त से कुछ नहीं होता है, वस्तु की स्वतंत्रता है, क्षेत्रव्य है, परिणमन व्यवस्था है, ये सब कुछ निश्चित करने के बाद की है। और आगे बढ़कर ये बात कहीं कहीं है, जो ऊपर जो बताया था ना अग्नि धारणा वगैरह, उसमें भी ऐसी बात आती है। कहते इस प्रकार आत्मा का ध्यान करने का एक यह भी साधन है, मेरी केवल विकल्पों में हानि हो रही है, करना धरना कुछ नहीं। यानी ये भी यहाँ पर भी विकल्प है, विकल्पात्मक जो है तो वो आत्मा का अनुभव नहीं है। ध्यान यानी मन को एकाग्र करने के ये अलग अलग तरीके बताए, परंतु ये आत्मा का ध्यान नहीं है, ये नक्की करना। चंचलता बस, हाँ, वो तो वैसे तो जो तत्वों में, तत्व विचार में एकाग्र हो जाता है उसके वैसे भी चंचलता अपने आप कम हो जाती है, उसका श्वास भी बंद, जो कुछ होने योग्य वो हो जाता है। और यहाँ तो ये उसका ध्यान, यानी उसके तरफ लक्ष्य है उसका, यानी वो तो पर का लक्ष्य फिर अपने तरफ ले जाने के मार्ग अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताए हैं। नीचे से दूसरा लाइन है 22 पेज पर, कोई कोई ऐसे प्राणी होते हैं जिन्हें दूसरों का संबंध करना कराने में ही मन लगता है, उन्हें लेना देना कुछ नहीं, किंतु फिर भी प्रकृति बन गई है कि दूसरों का विवाह संबंध कराते रहते हैं, केवल विकल्प करता रहता है। कहाँ है हानिर में ही विकल्पेशु, हानि ही में ही विकल्पेशु, यानी विकल्पों में मेरी हानि ही है, अर्थात विकल्पों में हानि ही हानि है, लाभ तो इस आत्मा को कुछ भी नहीं है। जैसे किसी ने एक स्वप्न देखा कि एक सेठ ने मेरे को 50 गाय इनाम में दे दी। एक ने उसकी गाय की कीमत पूछी तो बताया कि एक गाय का मूल्य 100 है। ग्राहक ने कहा कम ले लो, 60 ले लो। वो 80 तक आ गया, ग्राहक 70 में मांग रहा था। ग्राहक भी जोर से बोला और वह भी। परिणाम यह हुआ कि इस स्वप्न को देखने वाले की आँख खुल गई। आँख खुल जाने पर देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं है। उसे बहुत पश्चाताप हुआ और फिर उसी प्रकार आंखें बंद करके बोला, भैया 70 रुपये में ही ले जाओ। लेकिन वहाँ कुछ भी था क्या? केवल विकल्प ही तो है। अपने कुटुंब में ही देखो, कुटुंब के लिए सब कुछ किया किंतु मिलता क्या है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ होने के बावजूद भी आत्मा को तो कुछ नहीं मिल सकता। मृत्यु हो जाएगी, फिर साथ क्या जाएगा इनमें से? देखो, पुत्र अपने पिता का पितृतर्पण करता है तो क्या वहाँ पर एक भी जल की बूंद पहुँच जाती है? ये तो जैनियों में नहीं करते हैं, मगर फिर अन्य मती भी करते रहते ना, कुछ पानी में जाकर कुछ बहाते वगैरह साक्षरात करते हैं, गंगा में क्या क्या तर्पण करते हैं। केवल विकल्पों में सारा लोक भ्रम रहा है। समस्त क्लेशों का मूल मात्र विकल्प है। वे विकल्प छूटकर यदि आत्मा की ओर ध्यान जमे तो वही कल्याणकारी है। विकल्पों में तो हानि ही हानि है। अतः जिससे मैं विकल्पों को त्याग कर अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊं, ऐसा ही संकल्प उपयोग व प्रयत्न उत्तम है। हर एक गाथा में उन्होंने लिखा ना, श्याम स्वस्मय स्वे सुखी स्वयं। इसके संकट से बचने का एक ही तो यह उपाय है कि सच सच जान लो, यानी सत्य का ज्ञान ही उसका उपाय है। सही जानने से ही भ्रम मिटेगा। सत्य ज्ञान में सर्व संकट समाप्त हो जाते हैं। और सारे संकट टालने के लिए हम किसी के सामने, भगवान के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं ना? हाँ, भगवान नहीं, गुरु चाहिए। आजकल अच्छा हमको एक गुरु मिला था अभी ट्रेन में आते आते हमारे सामने के सीट पर। अरे क्या उनकी मान्यता होती, वो राधे कृष्ण वाले थे, सारे मथुरा जाके आ रहे थे पंजाब में से। एक वो था, उनका गुरु था, ऐसा वो कुर्ता सफ़ेद धोती वगैरह, बाल बिल ऐसे उमराले किए होंगे शायद वो, और क्या सब आके उसके नीचे जमीन पर नमस्कार करते थे, ढोक देते थे, हाथ में पैसा थमा देते, खीसे में डालता रहता है 100 की नोट देखो, 500 की, कोई 1000 की, देखो। और बस बस कृष्ण कर रहा है, तो श्री कृष्ण कर रहा है, देखो भगवान कर रहा है, भगवान ही सब मोक्ष देगा उसको, जो ऐसा ही सब। तो किसी ने उनको, किसी भक्तों ने अरेंज किया था, देखो भगवान ने यहाँ देवलाली में किसी ने नाश्ता वगैरह की अरेंजमेंट की थी, भगवान ने हमको सबको भूखी रहने से बचाया, आज अमुक है एकादशी है, ऐसा है वैसा है, इतनी बातें। बाप रे बाप, इन्होंने पूछा मुझे, मैं कुछ बोलूँ क्या? उन्होंने बिल्कुल नहीं बोलना न स्वमतवादियों के साथ करना है ना परम। हाँ, उसके तो कितने 700 लोग थे वहाँ पर, इस ट्रेन, हमारे ट्रेन में कुछ 100-200 थे, बाकी जो मिले वो ट्रेन से वो सब लौट रहे थे। यानी ये कहीं कहीं जाना खाना पीना बस यही उनका, बस ये यात्रा हो गई। कितना अच्छा खाया, कितना अच्छा क्या किया, और फिर सारे प्लानिंग चल रहे थे, अभी सिंगापुर जाएंगे, अभी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे बाप रे बाप,
सुशीला बहन क्या कहती, सुनाई नहीं दी?
सारे अपने विरुद्ध है बाहर। ये ऐसा लगता है ना, कहाँ अटके हैं, कितनी पराधीनता पर। और सब हर एक बात पर ईश्वर कर देगा, ये ईश्वर करेगा, ये तो तू क्या कर रहा है फिर उनका, ये ईश्वर का।
साथ में वहाँ एक बहन बैठी थी, उससे उम्र में अधिक थी और जास्ती क्लोज उसके साथ में शायद होगी। मैंने कहा कि क्या आप इनके रिश्ते में हैं? नहीं, वो हमारे गुरु हैं, मैं उनकी शिष्या हूँ। नहीं, आपका चेहरा और उनका चेहरा तो बिल्कुल एक जैसा दिखता है। अरे वो तो भगवान की मेहरबानी है, हमें ऐसा अच्छा चेहरा मिला।
हाँ, भगवान ने कर दिया। सब चल रहा है। चलो एक
आठ को टाइम नहीं
है नहीं सर, दुनिया कहाँ कहाँ बह रही और विचार नहीं किसी को, कुछ नहीं है, बस कितनी पराधीनता, कितनी पराधीनता है।
मैंने उस लेडी से पूछा कि आप लोगों में मोक्ष होता है क्या? बोला हाँ होता है। बोला ऐसा कैसा? बोले तुम भगवान की भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो कि खुश हो जाएगा तो तुमको मोक्ष दिलाएगा। जब तक तुम उसको खुश नहीं करते तुमको मोक्ष नहीं होगा। और फिर ऐसा एक थैली होती उसके अंदर हाथ डाल के,
वो सबके हाथ में इतनी बड़ी थैली।
तो मैंने पूछा क्या बोलते हैं आप लोग? तो हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण। तो मैं बोला आगे वाला दम वाला दम नहीं है क्या?
तो वही वही
ऐसा देते हैं। मैं जो अभी सुना हूँ अभी कि इनको देव और उनको गुरु
गुरु
वो स्वीकार करो तो मैक्सिमम आप 16वें भाव के अंदर मुक्त हो जाए, मैक्सिमम 16 भाव।
वो जैन के नाम पर चल रही बात,
नाम तो दिया आपको नाम से इनडायरेक्ट बोल दिया। उनको देव और इनको गुरु बस स्वीकार करो तो ज्यादा से ज्यादा आपके 16 भाव।
चलो जाते थे, मेरे को उधर चुप बिठाया, नहीं तो मैं तो चालू ही करने वाला था क्योंकि मैं अकेला था और उनके इतने फॉलोअर थे। बाप रे बाप, हमारी बोगी में 30-40 जने थे और सबके सामने उसकी पोल खुलती तो बेचारे को कौन नमस्कार करे, और जो नमस्कार करे कम से कम 100 रुपये हाथ में टिका भी और वो लेके जेब में डाल। बोला हमको बुलाया आओ जाओ।
और अभी स्टेशन आने का है तो बिल्कुल जाके कुछ कपड़ा कपड़ा चेंज करना तो इतना यहाँ से लेके यहाँ से
सब मेकअप वेकअप कर गए।
अच्छा लगे तो आज से सब कट जाएगा। चलो चलो आगे कुछ लोग पढ़ते अभी
मुझे वो एक मिनट है मुझे वो याद आई किसकी है। तो दादा भगवान का शिष्य था सीनियर टायर वाला रे, रे, क्या नाम है उसका? नहीं खेसी भाई। वो मेरे को बोला तुम्हारे साथ अपन पार्टनरशिप करेगा, धंधा करेगा। बोला क्या करना है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं तो छोटी सी दुकान लेके बैठा। तुम तो सीनियर टायर वाले तो बहुत टायर का रिमोल्डिंग करता था, बहुत बड़ा धंधा वाला था। कुछ नहीं, आपको एक जबान खींच बोलने का नहीं है, बस मैं बोलता हूँ ऐसा करना। क्या करना? तो बस ऐसे एक सीट के ऊपर आपको बिठाएंगे, आप खाली ऐसा करके बैठना, बाकी जो एडवर्टाइजमेंट करने हम करेंगे। देखो इतनी गर्दी हो जाएगी, कोई आते हैं कि मेरे का लड़का होगा क्या लड़की होगा, तथास्तु बोलने का, कुछ नहीं बोलने का। तो बोले उसको लड़का हो गया ना फिर देखो तुम्हारी क्या फेमस चलती है। मैंने बोला भैया मैं ऐसे 420 में नहीं पढ़ना चाहता, क्यों क्यों क्यों, मेरे बाल बच्चे बीवी है उसको कौन देखेगा, मेरे को अंदर लेके। तुमने किधर कुछ बोला है? तुम तो चुप बैठा है, तुमने बोला ही नहीं कुछ, तो कौन तुमको क्या करने वाला है? मैं बोला तो दूसरे को पकड़, मेरे को नहीं। खेत सी भाई तो दादा भगवान का शिष्य था। उसके कारण मैं दादा भगवान के साथ जुड़ गया था, जुड़ गया इसमें सिर्फ फोटो निकालने के लिए, और कोई आवे ऐसा करे और उसके अंगूठे में पानी डाले और पीते थे, क्या करे।
अच्छा डॉक्टर,
चलो अभी अपना अपने भगवान को देखो। दादा भगवान बहुत देखा।
ज्ञाता दृष्टा हमेकोस्मि निर्विकारो निरंजन नित्य सत्य समाधिस्थ स्वस्मै सुखी स्वयं। मैं जानने वाला वो देखने वाला हूँ, अकेला हूँ। ये अकेला कहने से इसको बेचारा लगता है अरे पर मैं स्वतंत्र हूँ और परिपूर्ण हूँ, अकेला हूँ, विकार रहित व मल रहित हूँ, अविनाशी, केवल की सत्ता में होने वाला साम्य अवस्था में स्थित हूँ, नित्य सत्य समाधिस्थ। इसलिए समता परिणाम में ठहर कर मैं अपने में अपने लिए स्वयं सुखी हूँ। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। इसमें जो स्वच्छता का अनुभव है वह तो हुआ दर्शन, उसमें जो गेयाकार होता है या अर्थ विकल्प होता है वह हुआ ज्ञान। देखो अर्थ विकल्प समझते हैं, पदार्थ, पदार्थ के भेदों को जानना, उसको कहेंगे अर्थ। गेम को जानना पदार्थ है ना, गेम पर उसमें स्व भी आया पर भी आया सब। पंचाध्याय में बहुत विस्तार से बताया था विकल्प की बातों में, अर्थ विकल्प आत्मज्ञान। जैसे दर्पण में दोनों बात होना आवश्यक है, दर्पण में जो निजी स्वच्छता है उसका भी परिणाम है, तथा स्वच्छता के कारण जो प्रतिबिंब है उसका भी परिणाम है। कुछ भी न हो, खुली जगह दर्पण को आकाश में सामने रख दो तो भी सूक्ष्म रूप से परिणमन होता ही है। यदि विश्वास न हो तो करके देखते जाओ तो देखोगे कैसे, क्योंकि दर्पण में स्वयं का प्रतिबिंब पड़ जाएगा। दर्पण को देखने जाओ तो सामने, आप दर्पण के सामने जाओगे तो अपना तो प्रतिबिंब होगा ही होगा। इस प्रकार मुझमें भी दो प्रकार का परिणमन होता है, उपयोग की अपेक्षा क्रमशः परिणमन होता है। जो भी पदार्थ है वह सामान्य विशेषात्मक है, आत्मा भी चैतन्य गुण के कारण सामान्य विशेषात्मक है। आत्मा का सामान्य प्रतिभास या समस्त जगत का सामान्य प्रतिभास कहो, एक ही बात है। दोनों का अर्थ एक ही है, ये कहते हैं। इसलिए उसको आत्मदर्शन, आत्मा का दर्शन ऐसा भी कहते हैं,
आत्मदर्शन,
आत्मदर्शनमयी कहते हैं सर्व सर्वदर्शित्व शक्ति को। यानी ये दोनों अलग अलग बात नहीं है, आत्मा का सामान्य प्रतिभास या सामान्य समस्त जगत का सामान्य प्रतिभास को एक ही बात है, क्योंकि सामान्य कहने से स्व और पर का भी भेद जहाँ नहीं वो सामान्य को, उसको प्रतिभास नहीं ले लेना विदाउट डिफरेंशिएटिंग एनीथिंग, स्व पर को भी नहीं, इसलिए उसको आत्मा का प्रतिभास वो दर्शन और बाकी सबका वो तो ऐसा नहीं लेना है उसमें। ये ज्यादा क्लैरिटी उन्होंने बताई है यहाँ पर। प्रतिभास के समय सब पदार्थों का जो सामान्य प्रतिभास है उसकी यदि खबर लग जावे तो वह ज्ञान बन जाएगा। चल मैंने क्या कहना चाहते हैं नहीं समझा, देखो पहले मैं पहले आत्मा का सामान्य प्रतिभास कहो या सबका आखे जगत का कोई की बात है, तो उसमें प्रतिभास की खबर पड़ जाए आपको, ख्याल में आ गया आपको प्रतिभास किसका भी जो ख्याल में आता है उसको क्या हम कहेंगे, ख्याल में आते हैं।
अभी ऐसा हम सोचते हैं सामान्य प्रतिभास, यानी अभी विश्व में मान लो 10 द्रव्य, 10 द्रव्य के 10 गुण और उसकी 10 पर्याय, लेकिन जब सामान्य प्रतिभास होगा तो ये द्रव्य गुण है परे ऐसा बोलेंगे नहीं, सबको है बस दैट्स इट, और वो सामान्य अवलोकन कहा जाएगा जो दर्शन गुण का कार्य, केवल दर्शन का कार्य समझे वहाँ तो अनंत पदार्थों को। लेकिन अरे ये जीव द्रव्य है, ये उसका ज्ञान गुण है, ये इसकी मति ज्ञान की परिया चल रही है,
खबर पड़ गई ना, वो ज्ञान हो गया,
वो उसमें भेद पड़ गया ना, खबर पड़ गई आपकी भाषा में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
देखो विशेष, देखो अब आप मान लेते आंख बंद करके बैठे थे, अन्य कुछ विचार चल रहा था, मन के द्वारा जान लेते थे, आपने आंख खोली, आंख खोली तो पहले क्या हुआ, देख अपन देखने के पहले दर्शन हुआ ना, दर्शन हुआ अपन, वो दर्शन वो जो अंतर्मुखता इतना छोटा है, आपको तो ऐसा लगता है हमने डायरेक्ट देखा सामने दीवार है, यानी उसके बीच का वो जो लैप्स चला जाता है वो पकड़ में नहीं आ रहा, परंतु वहाँ है दर्शन। परंतु आपको यदि खबर लग जाए, क्या खबर पड़ी, हमने सामने देखा तो दीवार दिख रही, खबर हुई ना, खबर हुई ना, ज्ञान में आया, वो ज्ञान है। यहाँ क्या लिखा देखो, प्रतिभास के समय सब पदार्थों का जो सामान्य प्रतिभास है, सामान्य प्रतिभास तो दर्शन है, और यदि वो खबर पड़ जाए क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, ये कहना चाहते एक छोटे से वाक्य में उन्होंने, यदि खबर पड़ती है तो ज्ञान कहलाएगा, यानी वो विशेष हो गया प्रतिभास, क्योंकि हमने चीज को देखा, इस चीज को पहचान लिया क्या है। हाँ बोला बोला, दर्शन गुण वाला, ये ज्ञाता दृष्टा वाले दर्शन को यहाँ, यानी उन्होंने वो अपने में स्वच्छता का अनुभव, वो स्वच्छता गुण नहीं लेना है, स्वच्छता का अनुभव, और उसमें वो जैसे आईने की स्वच्छता और उसमें रिक्त व्यक्ति होती, दोनों बातें हैं, वो स्वच्छता ही उसके रिफ्लेक्शन का कारण है, ऐसे अपने में स्वच्छत्व नाम का उन्होंने गुण प्रकट करना चाहा उसके नाम से, जैसे इसमें भी आते हैं स्वच्छत्व और प्रकाशकत्व, प्रकाशक यानी प्रकाशक, इसमें ये तो दर्शन के यूज में पहली बार मैंने यहाँ लिखा, ये स्वच्छता के साथ कंपैरिजन की ना, अन्यत्र कहीं ऐसी कंपैरिजन मेरे पढ़ने में नहीं आई है, यानी वो स्वच्छत्व गुण डायरेक्ट नहीं लिया, स्वच्छता का अनुभव वो दर्शन है बस इतना ही, क्योंकि जिसमें वो प्रतिबिंबित हुआ ऐसे वहाँ वो स्वच्छता का अनुभव लेना, उसको अलग से तो नहीं पहचानता, क्योंकि दर्शन को भी जानने जाओ तो वो तो ज्ञान हो जाता है। हाँ वही वही उसी दर्शन की बात है, ये समय दर्शन वाली बात नहीं है, यहाँ
उनको दर्शन लेने को कहा था ना वो,
देखो ये आगे भी ये बात बता रहे, देखो 24 पेज पर आना, सामान्य प्रतिभास में तो उस प्रतिभास की खबर ही नहीं रहती, यदि खबर रहे तो ज्ञान कहाँ जावेगा, ख्याल में ना क्या कहना चाहते हैं, यानी वो दर्शन वाली बात तो हम आगम से जानते हैं कि इसके जाना है हमने तो उसके पहले दर्शन हुआ है, सामान्य प्रतिभास किसका, यह जानना ही तो ज्ञान हो गया, जानने का अर्थ ही ज्ञान है, यानी किसके बारे में सामान्य प्रतिभास हुआ ऐसा अगर कहने जाओ तो ज्ञान ही हो गया ना। हाँ यह विशेष तत्व बन गया, यानी ज्ञान है वो विशेष हो गया, कहने को तो मुख से सामान्य कहा जाता है किंतु यह विशेष बन गया। सर्व पदार्थगत सामान्य उपयोग में अकेले नहीं हो सकता,
क्या बात, दोनों साथ युक्त हो गए,
क्योंकि सर्व पदार्थगत सामान्य उपयोग में अकेले नहीं हो सकता, पदार्थों का सामान्य प्रतिभास आत्म प्रतिभास रूप ही है, क्या कहते हैं ये, इसीलिए कहते हैं आत्मा का प्रतिभास वो दर्शन है, हाँ नहीं दिखाई ने, एक ही बात है दोनों, एक ही बात, हाँ फिर से पढ़ते इसको देखो, देखो सर्व पदार्थगत सामान्य, यानी पदार्थों में सभी पदार्थों में जो सामान्य है, तो कहते वो उपयोग में अकेले नहीं हो सकता, यानी पदार्थों का सामान्य प्रतिभास आत्म प्रतिभास रूप ही है, यानी इसका सामान्य प्रतिभास, इसका सामान्य प्रतिभास, इसका सामान्य, ऐसा अलग अलग नहीं हो सकता, ये सबका सामान्य प्रतिभास आत्म प्रतिभासमय ही है, ये कहना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन वगैरह मत मानो तो कुछ, देखो पदार्थों का सामान्य प्रतिभास आत्म प्रतिभास रूप ही है, देखो फिर पढ़ते पूरा तो आपकी पदार्थ ख्याल में आ जाएगा। विषय कहते हैं पदार्थ को, जिसको जानते हैं या जिसका प्रतिभास है उसको विषय कहेंगे, और विषयी कहते हैं आत्मा को, जिसने उस ज्ञेय को, विषय को जाना वो विषयी। सामान्य प्रतिभास रूप परिणमन जो प्रतिभास है वह विषयी को भी नहीं पकड़ता, यानी अकेले किसी को नहीं पकड़ता है, किंतु उसको करने वाला कौन, यह हुआ विषयात्मक। सामान्य की भी पकड़ हो जावे तो वह ज्ञान बन जावे, ख्याल में, ये सामान्य यदि आपके पकड़ में आ जाए तो हम उसको ज्ञान कहेंगे, उसको सामान्य नहीं कहेंगे, सामान्य प्रतिभास नहीं कहेंगे उसको।
तो ज्ञान और दर्शन दोनों को अलग अलग बताने का,
दोनों है ही अलग,
दोनों है ही अलग, दोनों का
सामान्य प्रतिभास वो दर्शन है, विशेष प्रतिभास वो ज्ञान है।
सामान्य प्रतिभास जो होता है वो भी ज्ञान में होता है ना,
ना दर्शन को नहीं,
दर्शन में होता है। चैतन्य के दो भेद, दर्शन और ज्ञान, ज्ञान होने के पहले दर्शन होता है।
ये जो ज्ञानोपयोग होने के पूर्व दर्शनोपयोग की जो बात है वह तो छद्मस्थ जीवों की है, लेकिन जो केवल ज्ञानी है, यहाँ बताया ना अभी थर्ड लाइन में बताया,
केवल ज्ञानी तो ऐसे टाइम होते हैं,
देखो 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 फोर्थ लाइन में शुरुआत से, सर्व पदार्थगत सामान्य उपयोग, पदार्थगत यानी हमने सोचा कि ये ज्ञान जो है वो सर्व पदार्थों को जाने, कब केवल ज्ञान होगा, और केवल दर्शन कब होगा, जब सर्व पदार्थों को सामान्य रूप से जानेगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यह सर्व पदार्थगत सामान्य उपयोग में अकेले नहीं हो सकता, यानी उसके साथ साथ ये सर्वगत है, उसके साथ साथ ज्ञान भी होगा,
ऐसा भी ले सकते हैं, सर्व पदार्थगत सामान्य,
हाँ
यानी सामान्य जो सभी पदार्थों में है वो उपयोग में अकेले नहीं हो सकता,
चैतन्य उपयोग हो गया,
नहीं नहीं उपयोग में अकेले नहीं हो सकता, यानी उसके अकेले पदार्थों का सामान्य उपयोग नहीं होता, उसके साथ आत्मा का भी सामान्य उपयोग होता है, ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आगे के वाक्य देखो ना, पदार्थों का सामान्य प्रतिभास आत्म प्रतिभास रूप ही है,
यहाँ अटकते सब,
इसलिए आत्मा का प्रतिभास वो दर्शन और पदार्थों का वो तो प्रतिभास वो विशेष प्रतिभास वो ज्ञान, तो लोगों को ऐसा लगता है ये आत्मा को जानना वो दर्शन और पर को जानना वो ज्ञान, ऐसा नहीं है उसका, क्योंकि पदार्थों का सामान्य प्रतिभास वो आत्मा का भी सामान्य प्रतिभास है, ये कहना है,
क्योंकि आत्मा को अलग तो नहीं किया ना सामान्य,
क्योंकि सामान्य में सब कुछ आ गए, क्योंकि इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन करते हैं, और वो धवला का रेफरेंस दे दे के वहाँ आत्म प्रतिभास ऐसा शब्द लिखा है वहाँ पर, परंतु ये सबका प्रतिभास वही आत्मा का प्रतिभास है, और इस शब्द में वहां पर भी लिखा था कि सभी पदार्थों का सामान्य प्रतिभास है वही आत्मा का प्रतिभास है, इसी को आत्मा कहा है। देखो हम पांच सात आठ लाइन हो गए अपने, देखो सामान्य की भी पकड़ हो जावे तो ज्ञान बन जावे, मिला चार अंतिम सातवीं लाइन, हाँ देखो सामान्य प्रतिभास रूप परिणमन जो प्रतिभास है वह विषयी को भी नहीं पकड़ता, यानी विषयी को, विषयी कौन है, आत्मा, यानी अपने अकेले आत्मा को पकड़ता है, अकेले पदार्थ ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य है बस वहाँ, ये स्व ये पर ऐसा कुछ भी नहीं वहां पर, सामान्य ने सब, किंतु उसको करने वाला कौन, यह हुआ विषयात्मक, यानी वो किसका परिणमन है, इसलिए वो आत्मा का कह दिया उसको विषयात्मक। हाँ सामान्य की भी पकड़ हो जावे तो वह ज्ञान बन जावे, पकड़े ने वो ख्याल में आ जाए,
ज्ञान खबर होना,
खबर होना, किंतु सामान्य प्रतिभास हो जाता है, उसकी पकड़ नहीं होती।
क्या बात,
यथार्थ में दर्शन कब हुआ इसकी खबर न पहले होती न बाद में, न अनुभव में, अनुभव ही होता है। वैसे वो श्रुत ज्ञान कहा है इसको, तो पहले मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, और मति ज्ञान के पहले वो सामान्य प्रतिभास लेना, वहाँ पर नहीं लेना, क्योंकि जो प्रथम समय है ना समय दर्शन का, वो तो साकार ज्ञानोपयोग में होता है, दर्शनोपयोग में नहीं होता।
पूर्व में
वो जो मति ज्ञान में ले लेना, क्योंकि मति ज्ञान हुआ था ये हमने, या श्रुत का शब्द सुना हमने, यानी विकल्पात्मक किसी विषय को किया था हमने, आत्मा को विषय करने जा रहे हैं, तो उस संबंधी कोई विकल्प, फिर उसको छूट कर निर्विकल्प हुआ इस तरह से। अभी यहाँ क्या कहते देखेंगे हम, यथार्थ में दर्शन कब हुआ इसकी खबर न पहले होती है न बाद में, न अनुभव ही होता है।
यानी अनुभव हुआ तो ज्ञान हो जाएगा,
ज्ञान हो जाता है। सामान्य प्रतिभास होता सबके है, और उस प्रतिभास का विषय मूल तत्व होता है, किंतु वह मैं ही तो हूँ ऐसा अनुभव विषय भोग के संस्कार वाले मोही प्राणी नहीं कर सकते। ज्ञानी पुरुष ही उसे स्वीकार कर पाता है, यानी उसको स्वीकार है, एक तो आगम से भी स्वीकार है, उस अनुमान से भी उसको स्वीकार है। ऐसी बात उपयोग रूप प्रयत्न द्वारा साध्य है, केवल वचनों से उसका अनुभव नहीं होता, यानी उपयोग में वो पकड़ में आ सकता है, वचनों से नहीं। एक कथानक है कि सब कौरव पांडवों के साथ धर्मराज ने युधिष्ठिर भी अध्ययन करते थे, गुरुजी ने पढ़ाया कि गुस्सा मत करो, सबने पाठ सुना दिया, किंतु युधिष्ठिर कि अभी याद नहीं हुआ। 4-5 दिन तक गुरुजी के पूछने पर यही उत्तर देते रहे, अभी याद नहीं हुआ। गुरुजी को बहुत क्रोध आया कि इसमें याद न होने वाली कौन सी बात है, तो उन्हें पकड़कर पिटाई की। काफी पीटने के बाद भी जब युधिष्ठिर को क्रोध नहीं आया तो वे बोले कि गुरुजी अब याद हो गया। इसी प्रकार वचनों से क्या होगा, यानी वो तो ये बात मैंने पहले ही पढ़ी थी कहीं पर। यानी वो क्रोध नहीं करना है तो वचनों में, उसने गुस्सा मत करो ये वचनों में नहीं, परंतु किसी प्रतिकूलता में भी क्रोध नहीं होना, उस रूप परिणमन हो जावे, तब उसने वो तो याद किया कहो या जाना उसने सही रूप से।
यानी उनको तो याद हो गया जब मार खाया, हाँ। गुस्सा नहीं किया, लेकिन
गुरुजी
को
नहीं, जिन्होंने पढ़ाया उनको नहीं
याद नहीं हुआ।
जब निर्विकल्प रूप से निर्विकल्प प्रतिभास करे तो दर्शन का फिट बैठ जाना हो सकता है।
क्या बात है,
यह दर्शन इस प्रकार है कि यदि फिर बैठा में जावे तो वह भी ज्ञान हो गया। बोल भी नहीं सकते उसको, आप पकड़ने जाओ तो ज्ञान हो जाता है। ख्याल में आई बात, देखना और जानना ये जीव के धर्म है, इस संसार में कोई किसी का नहीं, मैं तो चैतन्य स्वरूप एक हूँ, इस प्रकार का विचार करना चाहिए। पुत्र या पत्नी आदि किसी से भी कितना ही प्रेम क्यों न हो, किंतु है सब अलग अलग ही। कषाय से कषाय मिल गई तो दोस्ती, अन्यथा दुश्मनी। इसको भी राग है, उसको भी राग है, तो निर्दोस्ती, अन्यथा दुश्मनी। अच्छे बताए हैं, यानी जिसके रोज की भाषा में, मगर जैसे कोई ऐसा कहते हैं, जैसे छोटा बच्चा खेल रहा है, दूसरा भी वही खेल जानता है, तो दोनों की तुरंत दोस्ती हो जाएगी और प्रतिकूल दशा में दुश्मनी। इससे अधिक मित्रता व शत्रु में मर्म ही क्या है? ज्ञानी पुरुष ही समर्थ है, वह अपने से अनुकूल को भी एवं प्रतिकूल को भी निभा लेते हैं, किंतु अज्ञानी प्राणी अपने से प्रतिकूल को निभा नहीं सकता। मैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा एक हूँ, मैं विकार रहित हूँ, स्वभाव दृष्टि से कारण, स्वभाव दृष्टि के कारण निर्विकार हूँ और सरसता की दृष्टि से उपाधि बिना हूँ। क्या कहते हैं देखो, इन्हें पहले वाला विषय तो हो गया, तो निभा नहीं सकता। अब ये विचार बता रहे कि मैं एक हूँ, तो एक हूँ कि तो मैं अपने में हूँ, परिपूर्ण हूँ, तो द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा तो प्रत्येक द्रव्य तो एक ही है, क्षेत्र की अपेक्षा एक क्या है, भले असंख्यात प्रदेशी है परंतु है तो एक, यानी अखंड है, वो अखंडता को लेना वहां पर। काल की अपेक्षा एक हूं के अर्थ क्या है, अनादि अनंत पूरा ही है, पूरा प्रवाह क्रम, तो वो पर प्रवाह क्रम तो बदलने वाला नहीं, वो सब मिलकर मैं एक हूं। और भाव की अपेक्षा एक हूं, स्वभाव जो है, यानी अनंत गुण है भले परंतु उनका एक अखंड पिंड हो, पिंड हो, ये भेदों को नहीं लेना है, एकता को लेना है। हाँ, और उसमें न द्रव्य न खंडयामी, न क्षेत्र न खंडयामी, न काले न खंडयामी, न भावे न खंडयामी, मैं अखंड एक हूँ, वही वहीं से तो लिया है सारा, समय सार है, ये सारे इनके सारे ग्रंथों का अभ्यास है, उसके उनके सादी शब्द भाषा में बताया है उन्होंने। ऐसी दृष्टि बनाए ये रागादि भाव पौद्गलिक दिखाई देवे या चिदाभास दिखाई देवे, उसको चैतन्य का परिणमन है इसलिए चिदाभास कहेंगे, और वहां तो पौद्गलिक कह भी दिया है समय सार में, उसको पुद्गल है, पुद्गल का है, क्योंकि कर्म के उदय के निमित्त से होता है, वो उसी का है ऐसा कह देते हैं,
चित का आभास,
चिदाभास, क्योंकि वो विकार है ना, वो अपने से भिन्न है, भेद ज्ञान के बल पर उसको बिल्कुल जुदाई दिखाई देते हैं, ये कहते हैं। ऐसी दृष्टि बनाई कि, ये दृष्टि की बात है, दृष्टि का कमाल है, स्वभाव में दृष्टि ने मैंपना स्थापित कर दिया, तो ये रागादि विकार अपने से भिन्न ही दिखाई देते, तो मैं तो चेतन हूँ इसलिए इसको पौद्गलिक कह दिया। उपादान पर दृष्टि देवे या निश्चय नय पर, यदि प्रभाव निश्चय नय पर, उपादान पर दृष्टि देवे या निश्चय नय पर, यहां से रुकना चाहिए। यदि प्रभाव है तो आत्मा से क्या मतलब, स्वभाव और विभाव दोनों क्या एक साथ रहेंगे, मैं निर्विकार हूं, निर्विकार, निर यानी विकार से रहित हूं, निरंजन हूं यानी अंजन रहित हूं, अर्थात उपाधि रहित हूँ। क्या कहते हैं, काली माँ को निरंजन, चैतन्य शक्ति ही मेरा सर्वस्व सार है। ऐसा लगता है क्या, मेरा सर्वस्व क्या है, मेरा धनी मेरा सर्वस्व, मेरा बच्चा ही मेरा सर्वस्व, यानी क्या क्या होता है सारा, पैसा पैसा, धन तो पहले बता दिया ना,
धन बोलने से नहीं समझ,
पैसा 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 बोलने से ज्यादा उसमें जोर आता है ना। पदार्थों में ममता के परिणाम ने परिणाम न हो तभी शांति प्राप्त होती है,
परिणाम
करना जब तक पर पदार्थ में ममता के परिणाम है तभी तक अशांति है, इसको मिटाने वाली स्वभाव दृष्टि ही है। स्वभाव दृष्टि यानी स्वभाव में मैंपना की स्थापना, यानी पर पदार्थ अपने रूप नहीं लगते, मेरे है ऐसा लगते ही नहीं है, तो फिर उसमें तो अशांति का कोई सवाल ही नहीं है। यदि गीदड़ों के बीच में पले शेर के बच्चे को किसी प्रकार यह मालूम हो जाए कि मैं शेर हूँ, तभी उसे सुख है, और जब तक पता नहीं तभी तक गीदड़ है, पता लगते ही वह शेर का शेर। इसी प्रकार कोई प्राणी चाहे कितना ही हट्टा कट्टा क्यों न हो, यदि उसे संतोष नहीं तो वह दुखी ही है। और दूसरा, बूढ़ा बीमार कमजोर होते हुए भी यदि यह संतोष धारण करता है कि मैं स्वरूप में स्वस्थ हूँ, तो वह निरोग है, सुखी है। अतः अपनी आत्मा की दृष्टि ही सुख की दिलाने वाली है। मैं यदि न था तो आज न होता, क्या कहते हैं? मैं हूँ, उसका अर्थ है मैं था, क्योंकि जो जो वस्तु है वो तो अनादि से है और अनादि काल अनंत काल तक रहने वाली है। तो मैं यदि न था तो आज न होता, यदि कभी न रहूंगा तो आज भी मेरी सत्ता नहीं होनी चाहिए थी। यानी आज मेरी सत्ता है वो क्या बताता है? मैं अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहने वाला, क्योंकि कोई भी जो पदार्थ सत्ता ही उसका लक्षण है। वर्तमान की सत्ता ही सिद्ध करती है कि मैं अनादि अनंत हूँ। जो सत में हो उसे सत्य कहते हैं। मैं सत हूँ, मुझ में जो है हो वही सत्य है। यानी जिसकी सत्ता है उसको सत्य कहते हैं, और मैं सत हूँ तो मुझ में जो है वही सत्य है। ख्याल में है ना क्या कहना चाहते? जो अपने आप की स्वरसता से है वही सत्य है। जो चित्त स्वभाव अपरिवर्तित है, चेतना युक्त है, ऐसा मैं समाधि में रहने वाला तत्व हूँ। फुल स्टॉप देना। स्वरस अने अपने स्वभाव से, जो चित्त स्वभाव अपरिवर्तित है, यानी कभी बदलने वाला नहीं, मेरा चैतन्य स्वभाव कायम रहने वाला है, अपरिवर्तित है, चेतना युक्त है, ऐसा मैं समाधि में रहने वाला तत्व हूँ। सम आदि, समाधि शब्द कैसे तैयार हुआ? सम प्लस आदि, इसका मूल शब्द है आधि, सम उपसर्ग है, आधि मानसिक कष्ट है। जहाँ मानसिक व्यथा शांत हो उसे समाधि कहते हैं। हम कहते हैं ना आधि व्याधि उपाधि, उप उपसर्ग लग जाने पर उपाधि बनता है। क्या कहा? आधि शब्द है, मानसिक कष्ट है उसको आधि कहेंगे। ये उपसर्ग होते हैं संस्कृत शब्दों में, उसके पहले कुछ ऐसे लगता है, जैसे मोद है और प्रमोद, शांत है प्रशांत, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पहले सम उपसर्ग लगाया तो समाधि हुआ, अब उप उपसर्ग लगा लो, उप प्लस आदि उपाधि हो गया।
वैसे इंद्र और मिलिंद्र,
हाँ, उपकार होते समीप, उपकार होता है समीप जाना, तो समीप किसके समीप? आदि के समीप। देखो, उप नाम का उपसर्ग लग जाने पर उपाधि बनता है, यानी उपाधि शब्द तैयार होता है। उपाधि का तात्पर्य ही है कि जो मानसिक क्लेश के समीप ले जावे। देखो, समाधि का अर्थ क्या कहा? मानसिक व्यथा शांत हो उसे समाधि कहते हैं, और जो मानसिक क्लेश के समीप ले जावे उसको उपाधि कहते हैं। ऐसी जो उपाधि व्याधि जहाँ शांत हो गई वह समाधि है, यानी जहाँ उपाधि शांत हो जाती है वह समाधि है। अर्थात राग द्वेष रहित परिणाम, क्योंकि वही तो अपने तो अशांति है ना। ऐसा मैं ज्ञाता दृष्टा निर्विकार निरंजन नित्य अकेला हूँ, यही मेरा स्वभाव है। अन्य कोई विश्वास बनाना कि मैं ऐसा हूँ सो स्वरूप दृष्टि से बाहर है, यानी मैं मनुष्य हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, ये कहते स्वरूप दृष्टि से बाहर है। यदि कोई मुनि विचार करे कि मैं मुनि हूँ, मुझे असत्य नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार के विकल्प से क्या वह स्वरूप की ओर है, तो कहते नहीं। यानी वो कोई त्याग किया है, वो तो मुनि धर्म के जो पालन करना है, मुझे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो कहते वो नहीं है, स्वरूप में नहीं है। हाँ, कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये तो विचार कर रहे हैं ना, मैं मुनि हूँ, मुझे असत्य नहीं बोलना चाहिए, तो कहते इस प्रकार के विकल्प से तो वो स्वरूप की ओर नहीं है, वह पर पदार्थ में है, किंतु उन्हें इस प्रकार का विकल्प होता नहीं है, उनमें सहज ही संयम रहता है, जो मुनि है उनके सहज ही संयम रहता है, क्योंकि केवल विकल्प नहीं करते रहते हैं। जैसा कि कोई आदमी किसी कार्य को करने में बहुत निपुण होता है तो वह उस कार्य को सहज ही कर लेता है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, विचार नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार इनके भी यानी मुनियों के भी समिति गुप्ति सहज ही हो जाती है। ये नाम आपने सुने हैं समिति गुप्ति? हाँ शोभा बेन, हाँ मालूम है ना। तो कहते उपयोग नहीं लगाना पड़ता, यानी उसके लिए वो मुझे प्रयत्न करना है, ऐसा करना है वैसा करना है, ऐसे सोच सोच कर बातें नहीं होती, उसे सहज ही उसका वो परिणमन है। मैं चेतन स्वरूप हूँ, यह दृष्टि रखने से दुख नहीं होता, किंतु जो अंतरंग से यह मानता है कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, वह मिथ्या दृष्टि, यानी वो अपने को चैतन्य स्वरूप नहीं मान रहा है, मनुष्य हूँ मैं स्त्री हूँ, तो उसके सारे विकल्प उसी की तरह से रहते हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए जैसे उसने माना था, मैं मुनि हूँ मुझे असत्य नहीं बोलना चाहिए। जहाँ प्राणी इतना विचार करता है कि न मैं किसी का पुत्र हूँ न किसी का पिता, पर पदार्थ में मेरा कुछ नहीं, वहाँ यह भी विचार करना चाहिए कि न मैं पुरुष हूँ न स्त्री हूँ, ऐसी प्रतीति
विश्वास
अंतरंग से नहीं करनी चाहिए कि न मैं अमुक का अमुक हूँ, स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, यानी ऐसी अंतरंगी प्रति मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका पति हूँ, मेरे पुत्र हूँ, मैं ये मेरा है, ऐसा ये प्रतीति नहीं करनी है। ये कहते हैं मैं तो चैतन्य मात्र एक तत्व हूँ, तो वह ज्ञाता दृष्टा की क्रिया में लग गया समझो, यानी जब उसको अंदर से ये प्रतीति होती है कि मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, तो जहाँ जो मैं निश्चित कर दिया तो उसकी तो वैसी क्रिया सहज रूप होती रहेगी, मैं स्त्री हूँ मानता है तो उसकी वो चलती रहती है उसकी बातें। जैसे खरगोश का शिकार करने वाले शिकारी प्राय अपने साथ में कुत्ता रखते हैं, खरगोश भाग भाग कर आगे की झाड़ियों में छिप कर बैठ जाता है और अपने कानों से अपनी आँखों को ढक लेता है तथा यह समझता है कि अब मुझे देखने वाला कोई नहीं, तब यदि शिकारी की नज़र उस पर न पड़ी तो आराम से पड़ा रहता है, किसी प्रकार का विकल्प नहीं करता। उसी प्रकार उपयोग में यदि वे बातें न आवे तो कोई विपदा नहीं, उपयोग में बातें आ रही है इसीलिए विपदा है। यही रुकेंगे हम। जावान के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तकनम सदा देत हो।